ओके ओके पेज नंबर 21।
ये पाठ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मान शाश्वत तथा अव्यय है वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है।
हाँ, कैसे कर सकता है। भगवान कहते हैं कि अगर आत्मा स्वयं भी अविनाशी है तो वो किसी को हत्या कैसे कर सकता है और किसी का हत्या हो भी कैसे सकता है। लेकिन प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं क्यों अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। ऑल्दो द जस्टिस ऑफ द पीस, समबडी कैन रीड, ऑल्दो द जस्टिस ऑफ द पीस अवॉर्ड्स कैपिटल पनिशमेंट।
Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction. Knowing well that such violence committed to the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate, the man or another soul cannot be killed. So, for the administration of justice, so-called violence is permitted.
So, न्याय के लिए ये आवश्यक है कि युद्ध हो, युद्ध के लिए न्याय के लिए हत्या आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज अगर कहता है कि इसकी हत्या कर दी जाए, इसको फांसी, तो रोज कितने को फांसी लगाता होगा, तो क्या वो सबकी हत्या कर रहा है रोज? नहीं, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी को छोड़ देता है, किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना है नहीं, उसका कोई संबंध नहीं। और जब वो घर जाता है वापस, दिन खत्म होते तो बोझा लेके घर नहीं जाता, क्या इतने लोग को मैंने मार डाला और इतने लोग को ठीक किया, और ये कोई बोझा लेके नहीं जाता। वो तो केवल नियम के अनुसार, कानून के अनुसार इसको जो देना था वो दे देता है, दैट्स इट, और वो फ्री रहता है इन सब चीजों से। सो श्री प्रभुपाद इसके विषय में एक चीज और भी बताते हैं कि वास्तव में जीवात्मा जो है वो कृष्ण का अंश है, इसलिए भगवान के सारे गुण उसमें है। भगवान के जो गुण है, जैसे मुख्य तीन गुण है, शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय, ये मुख्य तीन गुण है। सच्चिदानंद जिसको आप कहते हो, सच्चिदानंद, तो आत्मा शाश्वत भी है, आत्मा ज्ञानमय भी है। ज्ञान का अर्थ होता है चेतनामय, हमें चेतना है, तो चेतना है, जीवंत है, वे आर लिविंग पीपल। ज्ञानमय एंड आनंदमय, फुल ऑफ ब्लिस, हमें आनंद की वृत्ति है, हम आनंद चाहते हैं, दुखी होना नहीं चाहते, हम आनंद चाहते हैं। सो कृष्ण हमारे वास्तविक मित्र है, और इसलिए इस तरह से हमें ये उपदेश दे रहे हैं। यस, इग्नोरेंट आत्मा, आत्मा इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानता का अगर धूल जमा हुआ है उसके ऊपर, तो वो आनंद को दुख समझता है और दुख को आनंद समझता है, ये उसकी समस्या है। भ्रम उसको हो सकता है कि जो नहीं है उसको मान लेता है भ्रम, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति में वो आनंद में है, वो आनंद के बिना रह नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हमने दिया था आपको कि आप इस कमरे के मकान में आप रहते हो, लेकिन आपके साथ कोई बोलेगा ही नहीं, तो बातें नहीं करेगा। अरे ये तो छोड़ो, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप कल सुबह, आज रात को सो जाओ, कल सुबह आप उठते हो, अगर घर वालों ने पहले से तय किया है कि आज सुबह से इनके साथ कोई बात नहीं करेगा, ऐसे ही मजाक कोई बात नहीं करेगा, तो पहली 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम, कोई बात क्यों नहीं कर रहे, है ना। फिर आप थोड़ी देर के बाद, फिर स्नान करते 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 थोड़ी देर में तो परेशान हो जाते हो, क्या बात है भाई, कोई उस बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे कोई, क्यों? क्योंकि आप हम उतनी समय के लिए भी हम अपने आप को इस तरह से इस अवस्था में नहीं रख सकते। तो आप सोचो कि लाइफ टाइम तो सोचा है, सोचना ही बेकार है। तो आनंद सबको चाहिए, इसलिए भगवान प्रभुपाद ने जगह लिखे है कि दैट इज टेल्ड इन भगवद गीता कि कृष्ण हमारे परम मित्र है और वो नहीं चाहते कि हम इस कष्ट में रहे। डेस्टिनेशन गाड़ी अटक। सो सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद अलग अलग प्रकार के मित्र होते हैं, उसमें भगवान सुहृद है। सुहृद का अर्थ होता है हमारे सबसे उत्तम मित्र। जैसे एक मित्र होता है उसको बंधु बोलते हैं, दूसरा है उसको मित्र बोलते हैं। संस्कृत में एक ही शब्द है फ्रेंड, इंग्लिश में एक ही शब्द है फ्रेंड, लेकिन संस्कृत में अलग अलग शब्द होते हैं, सुहृद, मित्र, बंधु, सखा, अलग अलग शब्द है। लेकिन प्रभुपाद कैसे है कि कृष्ण सुहृद है। सुहृद का अर्थ होता है हार्ट टू हार्ट फ्रेंड, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड, या फिर रियल वेल विशर, जो हमारे सही में वेल विशर हो, जो ऐसा चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो, उनको उसके सामने कुछ नहीं चाहिए। सामने जैसे एग्जाम्पल के रूप में माता, तो माता का माता चाहते कि बेटा खुश हो, प्रसन्न हो, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए इतना करो, ये कोई वास्तविक ये होता नहीं। माँ के हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं होती कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, कुछ बेटे से कुछ मांगते नहीं होते, दे डोंट नीड एनीथिंग। सो माता भी सुहृद हो सकते, माता भी सुहृद होते हैं। फिर कई बार हमारे रोज के व्यवहार में देखते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, जैसे माता है, पिता है, फिर कई बार पत्नी भी, जिसमें उनको अपने कोई स्वार्थ नहीं होता, वो केवल भला चाहते हैं, वेल विश, और कुछ नहीं। सो कई बार पत्नी भी या पति भी वो फ्रेंड हो सकते हैं, माता पिता, इस तरह से कई बार। लेकिन ये सब जो है वो एक सामान्य रिश्ते है संसार में। शास्त्र में कहा है सुहृद मीन्स वास्तविक मित्र, मित्र शब्द का उपयोग होता है सामाजिक मित्र, और बंधु का होता है औपचारिक मित्र। संस्कृत में अलग अलग अलग, सुहृद मीन्स वास्तविक मित्र, अर्थात जो आपका सही में हित चाहता है। फिर सोशल मित्र, सामाजिक मित्र, वो मित्र बोला जाता है उसको। और फिर एक होता है बंधु, औपचारिक मित्र। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के होते हैं। कृष्ण सबसे उत्तम है, इसलिए वो कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। जैसे पिता कहते हैं ना कि बेटा तुम स्वतंत्र होकर के क्यों रहना चाहते हो, मेरे साथ रहो, मेरी बात सुनो। तुम अलग रहते हो तो तुम दुखी होते हो, और मेरे साथ रहोगे तो तुम सुखी हो पाओ। भगवान कहते सर्व धर्मान प्रीति देव आनिकम शरण मिल, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को ध्यान रखूंगा। ऐसा भगवान स्पष्ट रूप से कहे थे, योगक्षेम बहाम्यम, जो कुछ तुम्हारे कम जो कमी है वो मैं पूरा करूंगा, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसका मैं ध्यान रखूंगा। सो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं कृष्ण मित्र के रूप में। जनरली क्या होता है कि हमारे लाइफ में जो मित्र है, फॉर एग्जाम्पल भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, एक एक पूरा सेट है, ये सेट हमें इस शरीर में मिलता है। लेकिन दूसरे शरीर में पूरा सेट बदल जाता है, अलग अलग पेरेंट्स, अलग अलग माता पिता, अलग अलग भाई बहन, अलग अलग सब सब कुछ अलग होता है। बोले सात जन्म सात जन्म सात जन्म साथ में रहेंगे, वो सात जन्म साथ में नहीं रह सकते आप, एक जन्म के अंदर ही ठीक हो जाते हो, तो सात जन्म तो दूर की बात। लेकिन जब दूसरा जन्म आएगा तो साथ में रहेंगे, कृष्ण हमेशा रहेंगे साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को पूछो, कोई बहुत विशेष मित्र, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, तो तुम भी साथ में 50-50 अर्धांगिनी है, तो सब में अर्धांगिनी होगी, तो 50% नरक में भी अर्धांगिनी के रूप तो। लेकिन संसार में ये सब होता नहीं, कोई कोई करता है। जैसे एक एग्जांपल था ना, वाल्मीकि ऋषि पूर्व जन्म में अपने नारद ने उनको बोला पूर्व काल में कि आप जरा अपनी पत्नी को पूछो कि तुम पाप किया उसका परिणाम के साथ देंगे तुम्हारी, तो बोले कि तुम मेरा सहायता करोगे। तो उसने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने थोड़ी तुम्हें कहा है पाप करने को, तुम अपने आप से पाप कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे परिणाम में क्यों साथ दूं। तो इस तरह से मनुष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में है। मैं कुत्ता बनता हूं तो कुत्ते के रूप में भी भगवान आते साथ में, कुत्ते के शरीर में भी मेरे साथ आएंगे। अगर मैं कॉकरोच बनता हूं जिसको आप देखकर भी पसंद नहीं करते, तभी भी अगर आप छिपकली बनता है कोई, तो उसके साथ भी भगवान रहते हैं। सुअर गंदगी में रहता है, ये गटर में रहने वाले कुछ कीड़े होते हैं, गटर के पानी में रहते हैं, मल के रहने मल में रहने वाले आप उसको तो देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी गंदगी में भगवान हमारे साथ रहते हैं, पूरी पूरा भगवान साथ रहता है, और ऐसा बहुत मुश्किल है। हाथी के रूप में भी हमारे साथ रहते हैं, फिर वही गाता ना हिप्पोपोटामस, तो उसको भी देखने से आपको अच्छा नहीं लगता, यू डोंट फील गुड, उसमें भी भगवान हमारे साथ रहते हैं, पड़ा रहता है गैंडे की तरह, लेकिन स्टिल भगवान उसके हृदय में भी साथ में रहता है। तो ये है कृष्ण, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो जाए, लेकिन कृष्ण हिचकिचाते नहीं है, वो रुकते नहीं है, वैकुंठ में रहते हैं, उनको कोई देना देना नहीं हम कहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। भगवान के भक्त को अपने भक्त को भी भेजता है। यस, भोग कर रहा है ना वो, तो भगवान साथ, भगवान मित्र होने के कारण आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये उनका वीकनेस करना उनका इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको अकेला नहीं छोड़ना ये उनका व्रत है, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, साथ में रहेंगे हमेशा। अर्थात आप किसी भी योनि में हो, आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते, ये नहीं सोचना चाहिए। कई बार हमारे भक्त लोग भी सोचते मैं अकेला पड़ गया, अरे कहाँ से अकेले पड़ गए, तो क्या शास्त्र पढ़ा तुमने, है ना, भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, तो आप अकेले तो हो ही नहीं सकते कभी, ये संभव ही नहीं है, कैसे आप अकेले हो सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आए, श्रीमद भागवत को भेजते, प्रभुपाद को भेजे, अपने भक्त को भेजते हैं, ताकि ये सब क्यों करते हैं भगवान, एक पिता की तरह कृपा करने के लिए कि आओ मेरे पास, अन्यथा उनको क्या लेना देना इससे, फिर भी ये सब व्यवस्था करके देते। और इतना ही नहीं, अगर कई बार भक्ति से हम दूर भागते हैं तब भगवान आपका चोटी खींच करके वापस ले आते, क्यों भाग जाता है, बैठे आपको लगता है कि भगवान ने बलपूर्वक मुझे बिठा दिया कृष्ण भावना में वापस, मैं भागने का प्रयास कर रहा था फिर से मुझे लगा, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं ऐसा कि आप उनके दुखी ना हो, भगवान ऐसा चाहते हैं, यही तो है ना सच्चे मित्र की पहचान, वो चाहते हैं कि वो दुखी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये गुण वैष्णव में भी होते हैं, वो सोच उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो आपकी सहायता करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि आप कष्ट आप दुखी ना हो, आप कष्ट ना भोगो, आज से भगवान की कुछ सेवा हो, यही उद्देश्य होता है। और फिर आप उस उसके साथ अगर कोई व्यवहार अनुचित व्यवहार भी अगर कोई करता है फिर भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप समझे ना, अगर कोई बच्चा माँ को लात मारता है, छोटा बच्चा जो उसको गोदी में लेते हैं, तो गोद में लेते समय छोटे बच्चे को नहीं पता, तो ऐसे तो हाथ पांव हिलाते रहता है, तो माँ को लात भी लग जाती है, तो उसको क्या अपराध के रूप में थोड़ी लेते हैं माता। इस तरह से वैष्णव जो होते हैं वो भी किसी को वो अपराध के रूप में लेते ही नहीं, किसी के साथ किसी भी कार्य को अपराध के रूप में नहीं लेते। यस साथ होते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन गलत करने वाला जो इच्छा है ना वो नहीं देते, कृष्णा नहीं देते वो गलत करने का इच्छा। हाँ साथ तो रहेंगे आपको, अलग अकेला तो नहीं छोड़ेंगे, तो बना कर दिया वो रोकते, लेकिन हम सुनते कहाँ है, वो तो रोकते हैं लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। वो इसलिए परमिट करेंगे क्योंकि अगर वो परमिट नहीं करेंगे तो तुम्हारी स्वतंत्रता चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता का क्या करोगे, फिर आप कंप्लेन मारोगे हमारी स्वतंत्रता का क्या। इसलिए भगवान आपकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए उनको परमिट करना पड़ता है। हाँ लेकिन आप गलत कर रहे हो ये बताने के लिए इतना सब करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं, को भेजते हैं, तो सब वो सब करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं है उनकी बात को, हम सुनते नहीं है। जब जब नहीं सुनते तब तक परेशान होना है, वो सिंपल लॉजिक है। आत्मा नो हंगार, आगे का सेंटेंस क्या, आत्मा हनोजना, आत्मा हनोजना का होता है कि देखो एक तो एक होता है सुसाइड आत्महत, जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब गया जानबूझ करके और मर गया, राइट, तो वो हुआ शरीर का आत्महत्या। और दूसरा होता है आत्महनन, जो आप बोल रहे हो, अगर कोई जीवात्मा भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ता है तो उसको आत्महनन बोला जाता है, अर्थात कि वो ये अवसर छोड़ करके वापिस चौरासीदाह में गिर गया, आत्मा का हनन। हाँ लेकिन वो आत्मा का मृत्यु अर्थात क्या, आत्मा का पतन हुआ, वो आप सब अलग अलग योनि में घूमता फिरेगा, फिर वो बन जाए। हाँ वैसा स्टेज जब आता है कि जब मैं कृष्ण भावना उसमें नहीं जुड़ता और शरीर खत्म हो गया मेरा, तो फिर मेरा जो मुझे मिल गया था रास्ता वगैरह सब मिला था, तो उसका उपयोग नहीं किया मैंने। तो चैतन्य कृष्ण हमारे सही मित्र है और वो हृदय से ऐसा चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा दुखी हो, समझ लो कि अगर आप दुखी है सही में, तो सबसे अधिक दुख किसको होता है, जनरली माता को, है ना, सबसे अधिक दुख किसको होता है, माता को, बाकी जिसको होना है नहीं होना है वैसे डिफरेंट है, लेकिन सबसे अधिक दुख होता है माता को। लेकिन जितना दुख माता को होता है उससे हजार गुना दुख भगवान को होता है। अगर हमारी आंख में से पानी आता है, अगर मेरी आंख में से पानी आता है तो क्या मेरी माँ उसको देख पाएगी, नहीं देख, तो आप भगवान कैसे देख पाएंगे, भगवान कैसे देख पाएंगे उसको। और उससे भी बड़ी समस्या क्या है कि वो आंसू जो हमारी आंख से आ रहे हैं उसका दोष भी हम भगवान को दे रहे हैं कि तुम्हारे कारण है, हालांकि उनको तो थोड़ा पेन हो रहा है आपके आंसू को देख करके, इसलिए बार बार सुविधा करते हैं तुम इस तरह से कृष्ण भक्ति में जोड़ो, इस तरह से जोड़ो, लेकिन हम उनका आभार प्रस्तुत करने के बदले उनसे कंप्लेन करते हैं। इसलिए कंप्लेन करना तो एकदम यूजलेस थॉट है। कंप्लेन करना भगवान को अपने दुख के लिए हो तो बेकार का विचार है, कंप्लेन तो करना ही नहीं। एक तो ऑलरेडी वो पेन और दुखी है हमारे कारण, तो भगवान और भी दुखी। तो कृष्ण हमारे परम मित्र होने के बाद भी हम हमारे सबसे प्रिय सबसे गंभीर मित्र कृष्ण उनको परिणाम स्वरूप केवल ट्रबल दे, केवल समस्या ट्रबल कष्ट दे और कुछ नहीं दे। अनुभव अच्युत और विच्युत की बात की थी ना मैंने, तो ये विच्युत सब कुछ हमारे पास। विच्युत को किस तरह से हम ले सकते हो कि जैसे कृष्ण अपने भक्त को प्रेम देने में चूकते नहीं, उसी तरह से मेरे जैसा विच्युत अगर कोई भक्त या कोई जीव वो कृष्ण को प्रेम नहीं करने में चुकता नहीं। मैंने भी ठान ली है कि मैं भी कृष्ण को प्रेम नहीं करने वाला है ऐसे, और कृष्ण भी ठान ली है कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ने वाला। दैट इज कृष्ण। जैसे कृष्ण हमारी इतनी सारी व्यवस्था करते हैं, आप जहां से जाते हो जिस जगह जाते हो सब जगह कृष्ण तुम्हारे साथ आते हैं। तो इसलिए वी शुड लिसन टू कृष्णा, जो बताना चाहते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे मित्र हो हे अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ये बात बताना चाहता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यदि भी अर्जुन तो समझता ही था, लेकिन वो जो अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे थे। सो टेक्स्ट नंबर 22।
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यस्त के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है।
हाँ, सिंपल लॉजिक। भगवान ने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आप सब याद रखना, आत्मा के लिए कई बार आपको हेल्प मिलता है। तो ये वस्त्र फॉर एग्जाम्पल गोपी चित्र क्या चित्र, हाँ तो नाम भी हम जैसे इनका अगर समझ लो कि ऑरेंज या सैफ्रॉन जैसा कलर है, तो ये कपड़ा आज के लिए है, लेकिन जैसे ये कपड़ा जीर्ण हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फटने जैसा हो जाए, पतला हो जाए, जिसको पहनने योग्य नहीं रहा अभी, तो आप क्या करते हो फिर वो कपड़ा बदल देते, राइट, आप अच्छा कपड़ा ले लेते। तो इस तरह से हमारा ये शरीर है वो एक वस्त्र की भांति है जिसको आप बदलते रहते हो बार बार, इसके लिए कोई ज्यादा शोक नहीं करता कोई। अगर आप ऐसा कभी देखा है आपने कि आपका कोई समझ लो को बहुत प्रिय कपड़ा था, फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर, अगर समझ लो कि अच्छा कपड़ा था आपको प्रिय था और वो फटने आया, तो आपने एक शोक सभा रख दी घर पे कि क्यों भाई किसके लिए, बोले बहुत प्रिय कपड़ा था उसके लिए कोई रखता है शो। इससे पहले हमने सुना था देही अस्मिन यथा, राइट, तो अगर कोई बच्चा है अब बड़ा होता है तो उसके लिए कोई शोक सभा थोड़ी रखता है, ये किसके लिए सभा रखी है, और मेरा बच्चा बड़ा हो गया क्यों, उसके शोक क्या है, बोले बचपन चला गया, कोई रखता है ऐसा। तो अर्जुन के केस में भी भगवान ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं कि ये इनएविटेबल है, इसको आप रोक नहीं सकते। वासना से जीना यथा विहाय लवानी या नरोपरा तथा सही लवानी देही। तो इसी तरह से प्रभुपाद से इज वेरी क्लियर, कृष्ण हमारी इच्छा को जानते हैं और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भोग करना चाहते हैं, समझ लो कि हम स्वतंत्र होकर तो भोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि ओके ऑलराइट यू एंजॉय, अब हो तो नहीं सकता हमसे, एंजॉय तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर समझ लीजिए पिताजी और एक अपना बेटा, बाप बेटा दोनों कार से जा रहे थे, तेज जा रहे थे और बच्चा हट करने लगा, पिताजी मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। पिताजी बोले कि बेटा ये गाड़ी तुझसे नहीं चलने वाली, तो बैठ मैं चला लेता हूँ। नहीं मैं चलाऊंगा। बोले नहीं ये तू नहीं चला पाएगा। नहीं मैं चलाऊंगा। तो मैं जो बहुत हट करना लगा, पिता सोचे क्या ये दिमाग खा रहे, तो साइड में पार्क करके दरवाजा खोल के गए और एक खिलौने का गाड़ी लेके आए, ये चला और आवाज मत करना बैठ जाओ। तो कार के अंदर गाड़ी चला रहा है, यहाँ ऐसे इधर उधर उधर घुमा रहा है राइट। लेकिन इसी तरह से खिलौना दे दिया, मशीन दे दिया, खेलो। तो इस तरह से जब हमें शरीर धारण करते हैं तो एक प्रकार का हमें खिलौना दे दिया प्रोक करने के लिए, ट्राई करके देखो। एक बार एक छोटा बच्चा होता है, कई बार पता है बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोग को खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं। तो खेलने में खिलौने में कई बार कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जैसे सिलेंडर होता है, स्टोव होता है, फिर बर्तन होते छोटे छोटे, तो वो बैठ करके कुकिंग कर रहे हैं। तो कह माँ माँ देखो देखो सब्जी बन रही है, माँ देखो मैं रोटी बना रहा हूँ, माँ को माँ कुकिंग कर रही है। तो माँ सोच रहे हैं कि हाँ वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बाद में क्या होगा, पहले तो उसने बोला कि मैं खुद बनाऊंगा रोटी, खुद बनाऊंगा। तो फिर माँ ने ला के दे दिया, लो खेलो। पहले तो मना कर दिया उसको, तो तू चूल्हे के पास नहीं जाएगा, उसको दे दिया। तो बनाया रसोई, अब रसोई बनाने के बाद अब उसको भूख लगी, तो माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ कहेगी बेटा जो तुमने बनाया ना वही खा ले, उससे काम नहीं होगा राइट। तो इसी तरह से हम कितना भी प्रयास कर ले हम भोक्ता नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते, हम स्वतंत्र होकर के भोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के खिलौने दिए। प्रभुपाद सेड दिस थिंग दैट नाउ दिस लिविंग एंटिटी वांट्स टू फुलफिल इट्स डिजायर इन दिस वे, ये जीवात्मा को भी इस प्रकार से इच्छा पूरी करना है। तो फिर वो प्रकृति को कहते हैं इसको उसी प्रकार का शरीर बना करके दे दो खिलौने के रूप में, लेट इट एंजॉय दैट। ऑलराइट वेरी मच राइट। Prabhupada said, we are all rascals. We are manufacturing our different ways of life, but we cannot fulfill our desire without sense of God. Because we are persisting that I want to fulfill my desire in this way, just like a child. He wants something and the father gives it. So but he sanctions with reluctance, saying, why does this rascal want this? This is our position. Ye murkh ऐसा पागल क्यों हो गया है, क्यों इस तरह से मांग रहा है गलत चीजें। लेकिन दैट्स व्हाट वी आर। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रति तुम्हारा सब रास्कुलम हटाओ, सब प्रकार के नॉनसेंस हटाओ और मेरे शरणागत हो जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रति मांग को। सो जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं उस तरह से हम शरीर बदलते हैं और आत्मा बिल्कुल वहीं का वहीं रहता है। नेक्स्ट लोग आप
ये आत्मा ना कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है।
पहला क्या है, शस्त्र के द्वारा एक हाँ एक पढ़ते। तो अर्जुन तुम्हारे पास कितना भी अच्छा अगर हथियार है, भीम के पास गदा है, नकुल सहदेव के पास तलवार है और भीम युधिष्ठिर का भाला है, लेकिन ये इसमें से कुछ भी भीष्म या द्रोण के आत्मा को मार नहीं सकते। फिर क्या है दूसरा, तुम्हारे पास अग्नियास्त्र है, अगर तुम अग्नियास्त्र से इन सबको जलाने का प्रयास करोगे वो भी नहीं हो सकता। फिर भिगोया, नेक्स्ट इज भिगोया। तुम्हारे पास वरुणास्त्र है, अब अरुणास्त्र से तुम बहुत ना 6-8 घंटे में 20 इंच बारिश डाल सकते हो अरुणास्त्र से। वो कल हुआ ना, कहाँ हुआ? बरुणा में। तो आप अरुणास्त्र कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे भी तो आत्मा को भिगो नहीं सकते। फिर क्या है? सुखाने का। सुखाने के लिए वायुवास्त्र, तुम्हारे पास वायुवास्त्र भी है और जिससे बहुत तेज हवा चलती है, पूरा साइक्लोन जैसे वो उड़ीसा में आया था वैसे साइक्लोन आता है। ये सब प्रकार के अस्त्र अर्जुन के पास थे, लेकिन इसमें से एक भी अस्त्र आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। आत्मा को ना जलाया सकता है, भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना कटा जा सकता है, क्योंकि ये चिन्मय वस्तु है। ये जो भिगोया जाए, जलाया जाए, काटा जाए, सुखाया जाए, ये सब पंच महाभूत के शरीर को किया जा सकता है, आत्म तत्व को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट श्लोक।
यह आत्मा अखंडित तथा अभूलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है।
इसको अग्नि में डालने से भी वो जलता नहीं। जैसे फायर बैक्टीरिया सुना है आपने? फायर बैक्टीरिया ये शब्द सुना है कहीं? फायर बैक्टीरिया, फायर बैक्टीरिया का अर्थ क्या होता है कि जो अग्नि में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको फायर बैक्टीरिया। जो अग्नि में बैक्टीरिया रहते हैं वो आप अंदाज नहीं लगा पाओगे उसमें। बैक्टीरिया नहीं, वहां तो आदमी लोग रहते, बैक्टीरिया नहीं रहते, लेकिन सूर्य लोग में भी लोग है, राजा है, प्रजा है, सब कुछ है सूर्य लोग में भी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक बोलेंगे इम्पॉसिबल, उधर थोड़ी कुछ रह सकता है कोई ऐसे अग्नि में, तो हम तो छूते जल जाते हैं। तो ये सूर्य लोक में तो बड़ा पूरा अग्नि है, वहां कौन रह सकता है? लेकिन आत्मा तो अग्नि जल नहीं सकता, तो उधर क्यों नहीं रह सकता? अगर आत्मा पानी के अंदर रह सकता है एक्वेटिक के रूप में, मछली के रूप में, तो पानी के अनुकूल शरीर है उसका, उसी तरह से अग्नि के अनुकूल शरीर हो सकता है कोई कि जो अग्नि में जलेगा नहीं, ऐसा शरीर हो सकता है। तो सूर्य में क्यों नहीं रह सकता? इस कमरे में कितने जीव होंगे आपको क्या अनुमान है? कितने अटेंडेंस कितनी आपके पास? 25-30। तो इस कमरे में कितने, 30 के अलावा कितने जीव होंगे? अनगिनत। कितने सारे जीव, कितने सारे, कोई हिसाब नहीं इसका। अब एक ही कोने में आपको हजारों करोड़ों जीवात्मा मिल जाएंगे एक ही कोने में, सो मैंने। और कहीं तो हमारे शरीर में होते बहुत सारे, सो मैंने इन शरीर बहुत। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद हमारे शरीर में बहुत सारे जीवात्मा होते हैं क्यों? प्रभुपाद ने कहा हाँ होते ना। तो उन्होंने कहा मैं अगर मैं प्रसाद खाता हूँ तो सबको मिलता होगा। तो प्रभुपाद दस्त में प्रभुपाद ने कहा अगर तुम ज्यादा खाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको ज्यादा खाना है तो नो प्रॉब्लम। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में इतने सारे जीव है शरीर के भीतर ही, लेकिन जो शरीर का जो मुख्य आत्मा है वो हम है। अर्थात ये क्या क्या है? सर्वव्यापी, क्या है? और
सर्वव्यापी अविकारी स्थिर,
अविकारी। अविकारी का अर्थ होता है उसको परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर रहता है। बच्चा बूढ़ा ऐसा उसको नहीं होता, अविकारी स्थिर। स्थिर का अर्थ होता है उसका अपना भी स्वरूप है। फिर हाँ वही सदैव एक सा रहने वाला, अर्थात वो हमेशा अपनी शाश्वत स्थिति बनाए रखता है। कुछ ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पर कुछ पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, आने वाले एक दो श्लोक में फिर से आएगा शायद। भगवान कहते हैं रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रिपीटेशन जब होता है इसका अर्थ होता है कि उसको बल दिया जा रहा है। अगर एक ही बात को 2-3 बार बताई जाती है अलग अलग तरीके से या बिल्कुल उसी तरीके से, इसका अर्थ होता है कि ये महत्वपूर्ण बात है, इसको रिपीट किया जा रहा है। जैसे भगवद गीता में मनमना श्लोक दो बार है, एक 9वें अध्याय में है और एक 18वें अध्याय में, सेम श्लोक मनमना भव मत करतो दो बार है। बिकॉज टू एम्फसाइज दैट, सो यस
रिगार्डिंग
व्हाट मायावाद, वेल दे डू नॉट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, राइट? दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। द सोल जो है उसका उनका उनका पास इसका कोई प्रॉपर ठोस आंसर नहीं। वो लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म का ही अंश है, वो ऐसा कहते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हाउ देयर सोल कम इन टू बींग। दैट्स व्हाट प्रॉपर इज सेइंग, राइट? या एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? When you're talking about the soul, so Prabhupada is trying to show you the different angles. Prabhupada अलग अलग एंगल से उसको दिखा रहे हैं तात्पर्य में। एक्चुअली थीम तो है आत्मा और शरीर का ज्ञान, दैट्स द थीम, बट दीज आर ऑल द सराउंडिंग पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट श्लोक, यस क्वेश्चन क्या है? समुद्र का बिंदु और समुद्र में क्वालिटी एक होता है और भगवान का अंश वो आत्मा है। भगवान के अंश के प्रकार हो सकते हैं, एक होता है आत्मा के रूप में और दूसरा होता है अवतारों के रूप में। तो ये है स्वांश बोलते हैं, विभिन्न अंश बोलते हैं। स्वांश में आत्मा और विभिन्न अंश का होता है आत्मा और श्वांश का होता है विष्णु तत्व। विष्णु का अंश है ये राम कृष्ण वगैरह वामन, ये कृष्ण के अंश है और हम भी अंश है, लेकिन हम विभिन्न अंश है। हम जीव तत्व है और वो विष्णु तत्व है, वो अनंत है, वो विभू है, हम अणु है, हम सूक्ष्म है, वो महान है। अणु रंजान महत्व महियान ये उद्धार काम लिखा है। आत्मा हम स्वयं, आत्मा हम खुद है, चेतना शाश्वत और आनंद ये तीनों का एक हम एक व्यक्ति है, पर्सनल। आत्मा एक व्यक्ति है, वो आत्मा है, शरीर उसका कवरिंग है, लेकिन हम स्वयं एक व्यक्ति है तो वो हम आत्मा है। हम निकल जाते हैं शरीर में से, हमारे शरीर से आत्मा ही निकलती है, हम शरीर से निकल जाते हैं, आप समझे ना? और ये शरीर जो है ये अब पूरे ठीक, ये मेरे लिए अभी बेकार हो गया है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो फिर मैं ये शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर ले लूंगा। अगर आपका गाड़ी खराब हो या रहता क्या करते हैं, मैं गाड़ी ले रहता हूँ, है ना? तो इस तरह से ये शरीर वो खत्म हो जाता है, तो उसको बदल करके हम चले जाते हैं, आत्मा नहीं जाता, अर्थात हम आत्मा एक ही है। चेतना का अर्थ होता है कि फीलिंग विलिंग थिंकिंग, ये सब जो होता है, इच्छा करना, फिर उसका कुछ किसी चीज का अनुभव करना, ये सब चेतना के कारण होता है। चेतना जैसे अगर समझ लो कि मृतक व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है, तो मृतक व्यक्ति में चेतना नहीं है, उसको आप कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप किसी साड़ी की दुकान में जाते हो साड़ी का सेल, तो उसमें कई कठपुतलियां खड़ी होती है, कई पुतलियां खड़ी होती है और सब साड़ी वाड़ी सब पहने एकदम एग्जैक्टली डेकोरेट करके रखा होता है, लेकिन आप उसको बोलोगे एक सेल्फी लेना है तो कोई स्माइल तो नहीं देगी वो तो वैसे ही है, उसमें तो चेतना नहीं, उसमें जान नहीं है। तो जान जो है चेतना है, वो आत्मा है। आत्मा का गुण है चेतना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहां बैठा हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि मुझ में चेतना है, चेतना जागरूकता चैतन्य कॉन्शियसनेस मुझमें चेतना है, लेकिन अगर मुझमें चेतना नहीं है तो यहाँ इस कमरे से मेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि चेतना नहीं है। तो ये जो भी हम देख रहे हैं बोलना सुनना देखना ये सब चेतना का प्रभाव है। जागरूक अवस्था चेतन अर्थात जड़ और चेतन ये जड़ है। लैपटॉप जो है वो कुछ बोलता नहीं है, उसको मैं दो गाली दे दूंगा तो वो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा उसको। और कोई प्रश्न? किसका ज्ञान नहीं चेतना ज्ञान में जो है ना वो चेतना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हो और आपको एक मॉस्किटो बाइट करता है तो आपको कैसे पता पड़ता? हाँ लेकिन वैसे वो तो आपको थोड़ी काटा, उसके शरीर के हाथ को काटा है, आपके हाथ को काटा है, आपको कैसे पता पड़ा? बिकॉज आपने चेतना है, इसलिए आपको अगर मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं तो सेंसेशन सेंसेशन आपको पता पड़ सकता है। जैसे आप समझ लो कि एक पोजीशन में दो घंटा बैठते हो तो सब पॉसिबल है कि आपके पैर में नमनेस आ जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है ऐसा कि आप वो आप फिर खड़े होंगे तो आपको थोड़ा सा ठीक एक 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 दो मिनट लगेगा कई बार ठीक होने में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है। इसलिए अगर आपका हाथ है इसके ऊपर जोर से रस्सी लगा दो, आप जोर से रस्सी बांध दो कपड़ा बांध दो तो आपका हाथ आगे काला पड़ जाएगा और नमनेस चल जाएगी। फिर अगर मैं आपको कोई सुई भी डाल दूंगा वहां पर आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा क्योंकि वो नमनेस चले गया। जैसे ब्लड सर्कुलेट होगा वैसे नमनेस वापिस चले जाते हैं, आपकी चेतना वापिस आए, दैट्स चेतना। और कोई प्रश्न चेतना को लेकर के? कैसे वेरी गुड क्वेश्चन। आत्मा हम जो अंदर है और शरीर बाहर है, हमारा शरीर ऊपर हमारा कवरिंग है, वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन भगवान का आत्मा ही शरीर एक ही है, दोनों अंतर नहीं है, दोनों में एक ही है। भगवान का शरीर और आत्मा अलग नहीं है, भगवान का आत्मा ही इतना सुंदर है, त्रिभंग सुंदर है, अर्थात वो आत्मामय शरीर है। अगर आप इंग्लिश रंग का मसाला यूज करोगे तो इसमें हमारे पांच मसाला यूज हुआ है, भूमि राप और नलो वायु राइट खम, ये पांच महाभूत इसमें हमारा शरीर बना हुआ है, इंग्रेडिएंट हमारा ये है। और आत्मा का इंग्रेडिएंट क्या है? सच्चिदानंद शाश्वत, वो उसका स्वरूप। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो ये पांच महाभूत से नहीं बना है, पूरा शरीर ही दिव्य है। जैसे ये जो भूमि इसमें है ना जिसको डलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, तो वैसे भगवान के शरीर को भी जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, भगवान के शरीर को कुछ नहीं होगा, वो आत्मामय है। इसलिए उसी शरीर से प्रकट होते हैं, लेकिन जब वो प्रकट होते हैं तो गूढ़ कपट मनुष्य जैसा दिखावा करते हैं। हालांकि उनको कृष्ण का आपने कभी देखा है उनका शरीर डाली निकल गया हो, और या श्रीमद भागवत में कहीं है कि कृष्ण को सेविंग किया गया हो, मुझ निकाल मुझ काटना पड़ता है भगवान को बार बार, ऐसा कहीं पर नहीं मिलेगा क्योंकि भगवान का शरीर पंचमहाभूत का नहीं है। लेकिन कभी कभी वो पसीना निकालते हैं, हमारे पसीना से बदबू आती है, भगवान का पसीना जो होता है अमृत जैसा होता है, ये दिव्य है। लेकिन भगवान का पसीना केवल स्वभाव बढ़ाने के लिए होता है, हालांकि उनको पसीना आता नहीं है, सही है, उनको कभी गर्मी लगती है तो भगवान को थोड़ी गर्मी लगती है, भगवान को गर्मी नहीं लगती। लेकिन भगवान ऐसा लीला प्रस्तुत करते हैं कि ताकि आपको सेवा का अवसर मिले, इसलिए वो गर्मी लगा दे, वो बहुत गर्मी लगी, भगवान उसको सलाह देखो बोले इसमें कुछ नमक तो डाल, ये चपाटी खाऊं कैसे सूखा चपाटी, नमक भी नहीं डाला इसके अंदर, तो भगवान को स्वाद की नहीं पड़ी है, लेकिन वो हमारे लिए लीला करते हैं इस प्रकार से। तो ये भगवान इन सभी शरीर की आवश्यकताओं से पर है, या शरीर के विकारों या परिवर्तनों से पर है। क्योंकि उनका पंचमामृत से शरीर बना ही नहीं, उनका आत्मा से बना हुआ शरीर आत्मतत्व।
आत्मा का जब कोई भक्त पूरे करके जाता है भगवान के नाम, तो आपको उसको कौन सा शरीर मिलता
है? वही भगवान जैसा मिलने से उसको काटो कटेगा नहीं, सेम जैसे कृष्ण का वैसे दिव्य शरीर बोलते उसको। भगवान के धाम में दिव्य शरीर होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में अस्पताल में पैदा हुए और अस्पताल में मर जाते हैं, इसलिए पता नहीं कि अस्पताल के बाहर कैसा होता है। इसलिए हमारा तो एकदम ऐसा एक यहाँ सुई ठोकी जाती है और बॉइल खाना होता है, ये अस्पताल में ऐसा ही होता है। तो हमारा प्रॉब्लम कि हम अभी इसके अंदर फंस गए हैं, तो हमें पता ही नहीं कि दिव्य शरीर कैसा होता है। तीन सूक्ष्म मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन से बनता है उनका शरीर। हाँ वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन वो दिखा नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है, वो ये हार्डवेयर है। इतना है मन बुद्धि और अहंकार।
सबको स्त्री का शरीर
ना डिपेंड्स, आपको बादल का शरीर चाहिए तो बादल बन सकता है, वहाँ बादल भी बोल सकता है, इधर बादल नहीं बोल सकता है। इधर डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। बादल को अचानक से इच्छा हुआ कि कृष्ण को अभी फल खाने की इच्छा हुई है, तो वही बादल पेड़ बन सकता है अपनी इच्छा से, और फिर वो पेड़ आपको फल कृष्ण को फल दे सकता है, और फल खाने के बाद लगता है कि अभी हवा देनी बढ़ी है कृष्ण, तो वही गोप सखा का रूप ले सकता है, फिर चावल बना सकता है। एनी टाइम यू कैन चेंज योर बॉडी एज पर योर डिजायर। कोई और था क्वेश्चन? खुद भी माता जी आपको हेल्प में,
माता जी बता रही हमारे शरीर के अंदर भगवान परमात्मा तुम्हें बैठे, इसका मतलब कि वहां पर चेतना है हमारे हृदय में भगवान बैठे परमात्मा।
हाँ, लेकिन चेतना आत्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा है शरीर में इसलिए चेतना। अगर ऐसा नहीं होता कि आत्मा इधर रहेगा और परमात्मा बाय बाय करके चले गए, ऐसा नहीं होता है, तो आत्मा परमात्मा साथ नहीं रहते। तो जहाँ आत्मा है वहां चेतना है। तो किसको मारना है बोलो, किसी को मार के दिखा दे। अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो आप उसको क्या बोलते हो? पास करे, चल बसा है ना, चल बसे, लेकिन कौन चल बसा? वो तो इधर ही लेटा हुआ है, कौन चला गया? गुजर गया भाई, वो गुजर गया। कौन? हाँ कौन गुजर गया? वो इधर ही लेटा हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो चला गया। तो वो चला गया जो आप बोलते हो ना, जिसको आप बोलते हो ना चला गया, वो है जो आप बोल रहे हो चेतना। हाँ जड़ हो गया वो, सीधी सी बात है, जड़ हो गया। उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन वो तो जड़ हो गया, उसको कुछ खाया उसको जलाना ही पड़ेगा बाद में। जड़ पदार्थ, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, सो वी कैन गो फर्दर। हाँ, आत्मा दूसरे शहर में चला जाएगा, घर का मकान, किराए का मकान है, मकान खाली कर दो, खत्म। दूसरे मकान में चले जाओ तो जिस मकान में जाओगे वही लाइट ऑन होगी, इधर तो लाइट ऑफ हो जाएगी ना। वो आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे। सो वी कैन गो फर्दर। सो व्हाट वाज़ द टेक्स्ट नंबर वी आर रीडिंग? ओके पढ़िए, वेरी फाइन। गो अहेड। ये जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है, ऐसा क्या है?
अव्यक्त।
अव्यक्त और
अकल्पनीय।
यस, उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इमेजिनेशन करना भी मुश्किल। जैसे फॉर एग्जाम्पल योगी लोग, प्रॉपर एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ योगी ऐसे होते हैं कि हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं और सीधा नर्मदा में बाहर आते हैं, और नर्मदा में डुबकी लगाते हैं सीधा समुन्द्र में जगन्नाथपुरी में बाहर आते हैं, जगन्नाथपुरी में डुबकी लगाते हैं सीधा द्वारका में बाहर आते हैं। ऐसे कुछ योगी होते हैं और उनको एक एक सेकंड में, ऐसा नहीं कि इधर डुबकी लगाया अभी दो तीन दिन के बाद द्वारका से प्रकट होगा, ऐसा नहीं, यहाँ डुबकी लगाया और सीधा उधर बाहर, लाइक दैट, सो स्ट्रांग। ऐसे योगी होते हैं, उनको अगर चंद्रलोक जाना है तो सीधा इधर बैठा हो मन की गति सीधा सब चंद्रलोक। आत्मा इस तरह से ट्रेवल कर सकता है लेकिन शरीर नहीं कर सकता है ना? आपको यहां से अगर अमेरिका जाना है फॉर एग्जाम्पल, अजय सिंह प्रभु को अगर अमेरिका जाना है तो आपको कम से कम कितना 18 घंटा तो बैठना पड़ेगा ना, अगर नॉन स्टॉप होगा तो भी 16 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, है ना, मतलब 16 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। तो आप बैठ जर्नी करो, बैठे रहो, तब जाके आप पहुंचोगे अमेरिका। लेकिन आत्मा एक सेकंड में आठ बंद किया उधर प्रकट, इतना इतना तेज पहुंच सकता है, इतना तेज। तो इस तरह से आत्मा कहीं पर भी किसी भी स्पीड पे जा सकते, जैसे नारद मुनि अचानक से कहीं प्रकट होते हैं, अचानक से प्रकट होते हैं और उनका जो कार्य है वो सिद्ध करके अचानक से गायब। तो इस तरह से दिस इज, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, योगी लोग के पास होता है तो देवताओं के पास तो होता ही है ये सब। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, बट स्टिल आत्मा इज मूविंग सो फास्ट, अकल तो नहीं है। स्वर्ग सिद्धि, स्वर्ग चाहे कोई भी हो, कृष्ण की इच्छा है आज कि उनको ये करना है तो वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अलग अलग तरीके से। स्वरूप तो चाहे भले उसका सखा का स्वरूप हो, लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं भंवरा बन जाऊं, कृष्ण को भंवरा अच्छा सुनने का इच्छा हुआ है तो वो भंवरा बन जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल रियालिटी विच इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। आध्यात्मिक चेतना में ऐसा होता है कि यहाँ हर एक वस्तु दिव्य होती है। जैसे माइक का स्टैंड है कि मैं उसको बोलूँ थोड़ा दूर चला जा तो अपने आप चला जाएगा, यहाँ पर मैन्युअली मैन्युअली करना पड़ता है ना, वैसे नहीं करना पड़ता, लाइक दैट वो चेतना हो जाती है, लाइक दैट। मन से भी तेज, वायु की बात छोड़ो, मन से भी तेज। मन आपका इधर बैठो और आप सीधे पहुंच सकते हो ना लंदन, आंखें बंद करो सीधा लंदन, इधर की मन की गति उससे भी तेज, आत्मा की गति सबसे तेज होती है। पॉसिबल इंग्लिश में दो एक जैसे शब्द आते होंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक ही होता हो, दैट में बी वन ऑफ द रीजन। यस दैट, यस बोलिए। यस, मन बुद्धि के अहंकार, आपका तीन चीज आपके साथ में है, मन बुद्धि अहंकार, आपकी इच्छाओं का बैंक बैलेंस आपके साथ में है। तो आप जैसे शरीर बदलते हो तो शरीर के अनुसार आपका स्वभाव आपका वृत्ति सब आता है। जैसे कुत्ते का वृत्ति है तो वो उसका जीवन बाहरी लटकता रहता है और पूंछ उसकी टेढ़ी रहती है। जैसे बंदर है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाएगा तो वो उसका स्वभाव बॉडी के अनुसार मिल जाएगा। पुरुष होगा तो वही पुरुष का स्वभाव, स्त्री होगा स्त्री का स्वभाव, वो सब आएगा। लेकिन इच्छाएं और उसका जो मानसिक जो क्या बोलते हैं उसको सिचुएशन स्पिरिट है उसका, या उसका जो इच्छाओं को आप समझ सकते हो इच्छाओं के रूप में, वो सेम रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, इधर का बचाव उधर, फिर वहां पर नया नया एसोसिएशन नई चीज लेते हो फिर नई इच्छा जन्म लेते हो तो वो तो कंटिन्यू रहते हैं साथ में। हाँ सूक्ष्म शरीर साथ में जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो केवल आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता है, आध्यात्मिक जगत में वो आध्यात्मिक बन जाता है, बाकी सब जगह घूमता जाता है। शेप है लेकिन उसको सीड फॉर्म में कई बार बोला जाता है, सीड फॉर्म बीज के रूप में, बीज के रूप में अर्थात जैसे आप उसको कृष्ण भावना में उससे वॉटर करते हो तो फिर वो उस प्रकार का पौधा क्रिएट होता है। एक्चुअली वो पौधा तो वही होता है कि जो आध्यात्मिक कृष्ण में होता है। और मैं ये अलग अलग जो बोले स्वरूप सिद्धि तो आपका जो कृष्ण के साथ किस प्रकार का संबंध है वो आपका उजागर होता है, बट एक्चुअली सोल हैज द फॉर्म, निराकार नहीं है वो। दैट्स व्हाई इट इज स्थिर, पिछले जो श्लोक था उसमें था स्थिर, तो आत्मा स्थिर है बिकॉज वो बदलता नहीं है। कुत्ता बने तो आत्मा फिर छोटा कुत्ता छोटे कुत्ते के रूप में नहीं रहता, उसका अपना एक स्थिर स्वरूप है। सो यस यस अगर आपकी चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो आप मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भावना उसमें जब आपका काम क्रोध का जो अज्ञान तक चला जाता है तो फिर आप उससे बाहर निकल सकते हैं। यस सेम परमात्मा, तो वहां तो परमात्मा की आवश्यकता नहीं, वहां तो स्वयं भगवान ही बैठे हैं, तो फिर परमात्मा यहीं पर रहता है, उधर तो स्वयं भगवान बैठे। सो टेक्स्ट नंबर 26 यस पढ़िए।
किंतु यदि सोचते हैं कि आत्मा जो जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी ये महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं।
हाँ तो भगवान कहते हैं यहाँ पर अथच, अथच कहा था पूरा सब्जेक्ट बदल दिया, अथच पूरा चेंज कर दिया सब्जेक्ट। अब क्या कहते हैं कि अगर वो बार बार जन्म लेता है और बार बार मर जाता है, आत्मा ही शरीर की बात हो रही थी अभी तक, तो अब चलो मान ले कि तुम आत्मा ही बार बार जन्म लेता है बार बार मर जाता है, तो उसमें फिर शोक कहाँ करने का, कहाँ शोक करने का। अगर समझ लो कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शरीर वो केमिकल के प्रोडक्ट है, तो अगर हम जन्म लिया है तो हमारा मृत्यु हो जाता है, तो आत्मा का जन्म और मृत्यु होता है, तो शरीर को मानते हो तभी भी होता है और आत्मा को मानते हो तभी भी होता है जन्म और मृत्यु, तो फिर इसमें शोक की क्या बात आएगी। शरीर की बात हो रही थी अभी मृत्यु और जन्म के लिए, और अब भगवान ने आत्मा के रूप में बताया, तो अर्जुन ने एक रूप से चेकमेट कर दिया, क्यों चेकमेट है ना, चेकमेट, इधर भी नहीं जा सकता इधर भी नहीं जा सकता, अब बताओ चेकमेट। तो शरीर की बात मान रहे थे और अभी आत्मा की बात बता रहे, तो आत्मा को अगर मृत्यु होती है और जन्म होता है तो उसमें कोई जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर समझ लो कि एक हमारा शरीर का केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है, ये सारे केमिकल इकट्ठे कर दिए जाए, अगर लेबोरेटरी में आप कुछ कर रहे हो अचानक से आपके हाथ से कुछ गिर गया तो वो गिरने पर क्या आप शोक करते हो, हाय हाय केमिकल गिर गया, आप ये शोक करते हो नहीं करते। प्रपस इसके अगर आप एसिड सोडा अल्कलाइन ये सब मिक्स करते हो और समझ लो कि इससे अगर आत्मा का जन्म होता है तो ये केमिकल बंच ऑफ केमिकल अगर है आत्मा तो केमिकल तो मुश्किल से आपका 500,000 रुपए का केमिकल आता होगा। 500,000 रुपए के लिए कोई व्यक्ति इतना थोड़ी रोता है। तो इसलिए अगर तुम शरीर मानते हो पहले कुछ साल पहले हमारे प्रभु जी थे पुणे में, उन्होंने 110 रुपए का बैग, बॉडी इज वर्थ ऑफ 110 रुपीज केमिकल, हमारा शरीर जो है वो 110 रुपए का है, लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हो कि आपका बॉडी 110 रुपए का है? नहीं, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर आत्मा बनती है तो अगर कॉम्बिनेशन में अगर वो कॉम्बिनेशन ये नष्ट हो जाता है तो इसको सोक करने की क्या आवश्यकता है? चेतना कॉम्बिनेशन से आती है तो दूसरे कॉम्बिनेशन से दूसरी चेतना जाएगी, वाई आर डिमांडिंग, सो नो नीड टू डिमांड। ये एक्चुअली दूसरा विचार है, ये निर्वाणवाद जैसा है, निर्वाणवाद, निर्वाणवाद में ऐसा आता है जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, इसको निर्वाण, द अल्टीमेट गोल इज निर्वाण, निर्वाण में स्टॉप दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन को बंद करो, उसको निर्वाण बोलते हैं। अब ये निर्वाणवाद है, अभी नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, अगर अर्जुन तुम मानते हो या नहीं मानते, जो जन्म लेगा वो मरता है और जो मरेगा वो जन्म लेगा, तो फिर उसमें शोक क्या आ सकता है? ये तो कंटिन्यूस साइकिल बन गई है ना, कि जन्म लेगा उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु करेगा उसका जन्म निश्चित है, तो ये तो साइकिल हो गई। तो मरना तो सबको है ही, जिसने भी जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा ही, एज पर द रूल जात से ही ध्रुव मृत्यु, तो मरना ही पड़ेगा। यस, क्या है लाइन पढ़ी? Lokayitas and Vaiparsikas, right? They don't believe in the separate existence of the soul. That means they consider the combination of certain material elements create the consciousness. Those people, they believe like this. जो कॉम्बिनेशन मटेरियल चीजों का कुछ कॉम्बिनेशन करने से कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है, सो दे बिलीव इन दिस वे। ऑफकोर्स प्रभुपाद ने इसको टाइटल दिया है कि इस प्रकार के लोग होते हैं, बट इन लोग का मेन थियरी इस प्रकार की है, उनका जो थियरी है उसके ऊपर फिर वो डॉक्ट्रिन बोलते हैं, इसका पूरा उसी सिद्धांत के ऊपर काम करते थे, उनके फिलोसॉफी, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके बुक्स होते हैं, सब कुछ होता है ये सिद्धांत के आधार पर। Who believe in the those who do not understand the separate identity of the soul other than with the body, they consider they both are same, material combination, material elements combination. Yes, so यहां पर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कर्मवाद, इस 37 नंबर श्लोक में बुद्धवाद होता है, नास्तिकवाद होता है, ये कर्मवाद भी है। कर्मवाद में क्या होता है कि मैं जैसा करूंगा वैसा फल मिलेगा, इसमें भगवान को बीच में कहां से लेना देना पड़े, भगवान क्या करेंगे इसके बीच में। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि मैं सबसे अधिक नीतिवान, मैं नीति के अनुसार कार्य करूंगा और इसलिए भगवान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान आपको परमिट करेंगे तभी आप आपके नीति के अनुसार भी आपको फल मिल सकता है, ओनली इफ कृष्ण परमिट्स, अदरवाइज नॉट। अगर आप कितना भी अच्छा डॉक्टर है फिर भी बच्चा क्यों मर जाता है? इसलिए कर्मवाद डिपेंड अपने आप में स्पष्ट नहीं है, भगवान की इच्छा के बिना, वो परमिशन के बिना काम नहीं हो सकता है, कृष्णल इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी इन दैट, वो व्यक्ति के रूप में हो सकता है। अगर आप सोच सकते हो कि मेरे कर्म के आधार से सब कुछ होता है, नो, इट्स नॉट ऑलवेज दैट. भगवान भगवान के बिना आपके कर्म भी कुछ नहीं कर सकते. हाँ, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपके कर्म का कोई वैल्यू नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है. आप अपनी स्वतंत्रता से अगर आप बाहर जाकर किसी को चाटे मार दो, है ना, सड़क पर जाकर, तो व्हाट यू आप क्या एक्सपेक्ट करो, सामने दो चाटा मार देगा, सिंपल. तो वो तो आपकी चॉइस है ना, आप चाटा नहीं मारते तो दो चाटा नहीं पड़ता, लेकिन आपने चॉइस का तो दुरुपयोग किया है, लगा दिया चाटा तो सामने आप पड़ी आपको.
गांधी जी होंगे साथ में, एक और बात
हो सकता है. यस,
कर्मवाद
वो आपके कर्म का डेफिनेशन आएगा थर्ड चैप्टर में. व्हाट कर्म डिफाइंस, कर्म का डेफिनेशन, कर्म कैसे बनता है. अगर समझ लो कि कर्म है, जैसे मैंने प्रसाद खाया तो ये कर्म होगा, ये कर्म कैसे बनता है वो थर्ड चैप्टर में पूरा डिफाइन किया जाता है, कि अलग अलग एंगल से भगवान बताते हैं कर्म किसे कहते हैं. दैट टाइम वी डिस्कस. किसका एंट्री? हाँ,
यस,
भगवान तो नियम से पर है ना, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं. यस, भगवान वो कर सकते हैं, लेकिन कर्मवाद जो है वो एक प्रकार का नास्तिकवाद है, जिसमें भगवान को हटा देते हो बीच में से, भगवान नहीं चाहिए उनको. व्हाट आई डू आई विल गेट, ऐसा वो मानते हैं. वो लोग ऐसा कहते हैं, वो लोग कैसा कहते हैं वही ना. आजा मेरी एग्जाम्पल है बड़ा, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो. हजारों खराब कर्म है, इसका कोई गिनती नहीं है, फिर भी लगा दिया आपके साथ भगवद गीता चर्चा करने के लिए. एग्जाम्पल है ना इतना अच्छा. कर्म देखने जाओगे तो पूरा पूरा गार्बेज ही गार्बेज है, लेकिन फिर भी भगवान कुछ हटा देते, डिस्काउंट कर देते, लगा दिया. वो आपको आठवें चैप्टर में बताएंगे. इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन आंसर तो अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो आई हैव टू बी स्टिक टू चैप्टर. ये चैप्टर के साथ स्टिक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अनलिमिटेड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा. यस, सो ओके, सो वी कैन गो अहेड. यस, वी हैव क्वेश्चन. सबका पुनर्जन्म होता है, सबको होता है पुनर्जन्म. जब नहीं, वो साइकिल में खत्म होगी, 24 लाख की साइकिल खत्म होगी तो आपको फिर से मनुष्य बनाएंगे. मनुष्य का है, मनुष्य का मिल सकता है. अगर आप भक्त नहीं हो तो आपको 84 लाख में घूम के फिर वापस मनुष्य का मिलेगा, साइकिल खत्म होगी तो फिर से मिलेगा, अवसर तो फिर से मिलेगा. हाँ, अगर जो भक्त नहीं हो उसके लिए, लेकिन अगर जो भक्ति में जुड़े हुए हैं तो उनको फिर दूसरा जन्म मनुष्य डायरेक्ट दे देंगे, वो 84 लाख का डिस्काउंट. ओके, दैट डोज डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड वैशिकास एंड लोकायतास, वो आपके परपट में है. ओके, सो टेक्स्ट नंबर 28.
सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं. क्या
बहुत सारे क्या कीड़े, फ्लाइंग फ्लाइंग उड़ने वाले ओके। सो ये है शून्यवाद। शून्यवाद जैसे समझ लो कि हमारे इस बिल्डिंग में पीछे की साइड पे पहले कुछ नहीं था, पीछे की साइड पे, या इसी बिल्डिंग में 305 नंबर के पीछे कुछ नहीं था, बीच बाद में एक कमरा बन गया और कल वो कमरा टूट गया, है ना, कमरा टूट गया ना, कमरे के बाहर का बालकनी वो टूट गया पीछे का, राइट। तो पहले कुछ नहीं था, इसको पता ही तेरा जन्म नहीं हुआ था तेरा, उसके पहले कुछ नहीं था उधर, लेकिन बाद में एक निर्माण हुआ उधर और फिर से टूट गया। ऐसे ये यहाँ पर आपका प्रिविलॉन है, उसके पहले क्या था, एक मॉल था, राइट, क्या था, गैलॉप्स मॉल था, वो उसके पहले कुछ नहीं था, उसके पहले अगर आप बहुत साल पहले हम लोग देखते थे ये हमारे रास्ता है ना, वो भी एक छोटा रास्ता था, है ना हरिवंश प्रभु, कितना रास्ता था, आमने सामने गाड़ी भी सामने जाएगा नहीं, अगर एक आता है एक को लिवर जाना पड़े, इतना छोटा रास्ता था, है ना, शारदा फार्म था, यस, तो शारदा फार्म था उधर, वो खत्म हो गया, वो नष्ट कर दिया, उसके ऊपर गैलॉप्स मॉल बना, फिर नष्ट हो गया, अभी इसके ऊपर प्रिविलॉन बना, अभी ये कुछ 100 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, ये उसको पता, राइट, फिर वो नष्ट हो जाएगा, इसके ऊपर और एक नया फीलिंग होने। तो जिस तरह से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले सब कुछ शून्य था और फिर बिग बैंग हुआ या फिर और सब मटेरियल एलिमेंट से एक सर्जन हुआ और वापस सब टूट जाएगा, सब शून्य में खत्म हो जाएगा, मिट्टी था मनुष्य बना और फिर वापस मिट्टी में मिल गया, मिट्टी का घड़ा बनाया, घड़े के पहले मिट्टी था, फिर उससे से घड़ा बनाया, घड़े को तोड़ दिया, वापस मिट्टी बन गया। इसलिए वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये शरीर और ये आत्मा शून्य में से प्रकट हुए, बीच में आए और शून्य में खत्म हो गए, नास्तिक, नास्तिक वाद ऐसा, एक बार मर गया तो कर्म का चक्र रुक गया, तभी कल आगे जाके क्या होगा, ऋणम करता घृतम पीबे या वह जीवित सुखम जीवे, ऋण करके भी घी पियो, यस्मिन यावत जीवित सुखम जीवे, जैसे भी जियो लेकिन राजा की तरह जियो, हमेशा ऑपुलेंट जियो, भस्मी भूत से देहस्य ऋण करके घी पियो, अर्थात पहले घी पियो, बॉडी को हेल्थी बनाओ, बॉडी को हेल्थी करने के लिए क्या कर सकते हो, योगा कर सकते हो, शिविर कर सकते हो योगा का, बॉडी को हेल्दी करना है तो घी पियो, लेकिन घी के पास घी का पैसा तो है नहीं, कोई बात नहीं, कर्जा लो, ना ना ना, कर्जा तो आजकल तो पकड़ लेते, सरकार बदल गई, कर्जा पकड़ लेते तो बहुत मुश्किल हो गई, भस्मी भूत से देहस्य, कर्जा लेने के बाद भस्मी भूत से देहस्य, शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर तो आना नहीं है, फिर दूसरी बार पुत्र पुनरागमन भवे, दूसरी बार तो आना नहीं है, ये नास्तिक थी अभी चार बार उन्होंने कहा थे, शून्य बात। नेक्स्ट श्लोक इज अमेजिंग श्लोक, अमेजिंग अमेजिंग, है ना आश्चर्य में श्लोक, अमेजिंग श्लोक, अलग 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 तीन चीज बताई है इसमें आश्चर्य। इसमें प्रभुपाद ने एक अर्थ बताया है, लेकिन हमारे आचार्य ने इसके तीन अर्थ बताए अलग अलग रूप से। इसको कोई आश्चर्य के रूप में क्या करता है, आत्मा को देख रहा है, तो इसमें कोई जो है वो करता हो गया, राइट, देखना क्रिया हो गई, और किसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट आत्मा, तीनों को आश्चर्य तरीके से काउंट कर सकते हो, तीनों को संस्कृत लैंग्वेज, तीनों को आश्चर्य कैसे, फॉर एग्जाम्पल जो व्यक्ति आत्मा को देखता है शरीर को नहीं देखता वो सही में आश्चर्य अमेजिंग पर्सन अमेजिंग जो देखने वाला है वो अमेजिंग है। फिर आत्मा को देखना अपने आप में अमेजिंग है। कुछ लोग आत्मा को देख नहीं सकते वो शरीर को ही देख सकते तो देखना जो प्रोसेस है क्रिया वो अमेजिंग है। और कुछ को देखते हैं लेकिन ये और कुछ लोग आत्मा जो स्वयं अमेजिंग है आत्मा जो स्वयं आश्चर्यमय उसका क्षेत्र है आई मीन आत्मा स्वयं आश्चर्यमय है अमेजिंग जिसकी हमने कभी चर्चा किया था थोड़ी देर पहले तो उस तरह से आत्मा जो है वो अमेजिंग है। तो आप दोनों तीन अमेजिंग फिर दूसरा है सुनना सुनना ना सेकंड इज डिस्क्राइब करने वाला। तो आत्मा के विषय में बोलने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं इसलिए आत्मा के विषय में बोलने वाला अमेजिंग है। फिर आत्मा के विषय में बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बोलना जो प्रोसेस है बोलने की क्रिया है वो भी अमेजिंग है आत्मा के विषय में बोला जा रहा है। और आत्मा का वर्णन करना तो आत्मा वो स्वयं भी अमेजिंग है जिसका वर्णन जो हमसे हो नहीं पा रहा है इजंट इट सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर एंड सुनने वाला तीन चीज। तो आत्मा को सुनने वाला भी अमेजिंग है आत्मा के विषय में सुनने वाला व्यक्ति भी अमेजिंग है। सुनना भी अभी बहुत सारी बातें सुनने के लिए होती है लेकिन आत्मा के विषय में बातें जो सुन होती है वो सुनने वाली क्रिया भी अमेजिंग है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो यानी श्रवण से ही हमारे उदय होता है। और किसका श्रवण कर रहे हैं वही आत्मा का। तो समझे ना अभी अलग अलग उसके अर्थ कर्ता तीन है फिर जो क्रिया है तीन है और आत्मा वो मुख्य ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से अलग अलग व्यवहार के लेकिन इतना होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे अमेजिंग है कि फिर भी समझ नहीं पाते। 2000 वर्ष अमेजिंग इतना सीखने के बाद इसमें प्रश्न सुनने के बाद फिर भी सम पीपल ऑफ माई जैकल उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी सुनो कितना भी सत्संग करे माला करे जप करे जैसे मेरे जैसा कितना भी माला करे शास्त्र पढ़े कुछ भी करे जैसा है वैसा का वैसा ही रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नो चेंज लाइक दैट ये अमेजिंग दैट्स अमेजिंग यस। सो नेक्स्ट श्लोक फिनिश्ड भगवान ने बता दिया फाइनल कंक्लूजन ये भी क्लोज करने वाले तो तीस था ना ये गोइंग टू क्लोज इट नाउ बेस्ट अमाउंट सारा कंक्लूजन ले लिया इधर उधर की बात बहुत हुई इसे नाउ डोंट therefore you no need to grieve for any living being इसका हल नहीं हो सकता इसलिए आप चिंता मत करो युद्ध करो। अगर सही ज्ञान होगा तो सही क्रिया होगी सही एक्शन होगा। ओके सो यू कैन टेक टू मोर श्लोकस बिकॉज मैं सोच रहा हूं कि एक एक्सरसाइज करना चाहते थे तो ये एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट टाइम कराएंगे अभी टाइम इट टेक्स द मोस्ट लोकस। ओके कर्म कांड शुरू कर रहे भगवान यहाँ से 31 से 38 तक पूरा कर्मकांड का आधार पर समझाया। ये पहले जो बताया था उसकी तुलना में ये जो 7-8 श्लोक है वो कम महत्वपूर्ण ज्ञान की दृष्टि से है अर्थात लेस एलिवेटेड कॉन्सेप्ट जिसमें शरीर और आत्मा के अंतर की बात नहीं हो रही है, अब शरीर के संबंध से बात कर रहे हैं भगवान, क्षत्रिय के रूप में, शरीर क्षत्रिय का है ना, तो क्षत्रिय के रूप में भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे शरीर के लिए, क्षत्रिय के लिए युद्ध करने में पाप नहीं लगता, उसी तरह से ब्राह्मण को यज्ञ करने से पाप नहीं लगता। लेकिन क्षत्रिय अगर युद्ध करता है, अगर आर्मी वाला है, तो वो हजारों लोग रोज कितने लोग को मार डालता है, तो उसको क्या पाप लगेगा? उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको आदेश मिला है, ऑर्डर मिला है। इस तरह से जैसे जज का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो जज भी किसी सबको बोलता है तुम्हारा फांसी, तुम्हारा फांसी। तो इस तरह से उसको क्षत्रिय जो होता है उसका ये ड्यूटी है। द पॉइंट हियर इज नॉट अबाउट एक्टिविटी, इज मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पालन कर रहा है अर्जुन जो है, वो कर्तव्य पालन कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्तव्य पालन में पाप नहीं लगता है, उसमें कोई पाप नहीं है। देयर इज क्षत्रिय मेंटालिटी एंड वो कर्म कांड के आधार से, अर्थात तुम्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। श्री प्रभुपाद एक जगह पर बताए थे इसके विषय में कि लोगों को ये पता नहीं है कि कर्तव्य हमारा जो होता है वो हमारे सारे प्रॉब्लम को समाप्त करने में सहायता करता है। हमारे अगर कर्तव्य भगवान के आदेश के अनुसार अगर उसको फॉलो करते हो आप, जैसे अर्जुन फॉलो कर रहे हैं, तो सारी समस्या समाप्त है। और समस्या कौन सी है? प्रभुपाद कहते हैं लोग समस्या को भी नहीं पहचान पाते, कर्तव्य की तो बात छोड़ो, समस्या कौन सी है वो भी वो नहीं समझ पाते। जैसे युद्ध एक समस्या है, या फिर बारिश वर्षा, इतना कल बड़ौदा में बहुत बारिश हुआ, वो भी एक समस्या है। तो वो वास्तव में समस्या नहीं है, समस्या कहाँ पर है कि यशवी डेड लाइन प्रभुपाद सेज दैट इवन द वॉर स्टॉप देर इज नो क्वेश्चन दैट पीपल विल लिव फॉर एवर। अगर युद्ध खत्म हो गए तो नहीं, मरना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर बाढ़ चली जाए, बारिश चली जाएगी, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठंडी आ जाएगी, फिर ठंडी में प्रॉब्लम होगा। सो नो, दैट इज द लॉ ऑफ, नॉट द लॉ ऑफ नेचर। दुखारयम अशाश्वतम, पर प्रॉब्लम इज हाउ टू स्टॉप अवर कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। ये शरीर के अंदर हम फंस गए हैं, उससे कैसे निकलना है, ये समस्या है। समस्या ये नहीं कि अब टेम्पररी सॉल्यूशन, अरे यहाँ पर मुझे इचिंग आ रहा है, खुजली की बीमारी, तो उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, है ना, कुछ लगा सकते हैं उसके ऊपर, कोई क्रीम वगैरह वो लगा दिया तो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर से आए। तो समस्या उधर नहीं, समस्या ब्लड में है, कि ब्लड में प्योरिफिकेशन चाहिए, तो फिर वो दवाई लेता है और ब्लड शुद्ध हो जाता है। जब मूल प्रॉब्लम को ढूंढना चाहिए, सुपरफिशियल प्रॉब्लम नहीं। सुपरफिशियल प्रॉब्लम तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल प्रॉब्लम जो है, जैसे कहा जाता है ना, तीन क्राइटेरिया है, उससे प्रॉब्लम सेट किया जाता है, कॉमन टू ऑल, देन नोबडी कैन अवॉइड इट एंड नोबडी वांट्स इट, दैट थ्री क्राइटेरियाज। कोई चाहता नहीं उसको, कोई उसको रोक नहीं पाता, और सबको एक समान है। ये तीन क्राइटेरिया मैच होता है, दैट इज द रियल प्रॉब्लम, वो वास्तविक समस्या है। So, yes, three criteria. Nobody can stop it. Nobody can. It's a common to all, and nobody likes it. No. Yeah, that's the real problem. Then nobody will get ahead. Okay, text number 32. देह आत्मा बुद्धि का अर्थ होता है जो देह और आत्मा को एक मानता है उसको देह आत्मा बुद्धि। ओके, टेक्स्ट नंबर 32, ये क्वेश्चन। ओके, टेक्स्ट नंबर 32।
एक बार जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक की द्वार खुल जाता है।
हाँ, देखो यहाँ पर ऐसा युद्ध कहाँ से मिलता है? सामने से धर्म युद्ध आया है, क्षत्रिय तो सामने वाले भी है, दुर्योधन साली वो जो सेना है वो भी तो है क्षत्रिय, लेकिन उनको अधर्म के साइड खड़ा रहा है वो लोग अधर्म के साइड, तो ऐसा धर्म युद्ध तो किसी को भी मिलता है, और उसमें भी तुम जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वाभाविक है, ईश्वर मिलेगा, और वो लोग मर जाएंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा। चुके सो ऑस्पिशियस वॉर, वो इन सबको मार करके उनका उद्धार कर सकता है, इन लोगों को मार करके, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट। जो राजा होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बंगाल बंगाली में कहावत है, बंगाली में कहावत क्या है कि अगर आप क्षत्रिय हो तो बोल सकते बंगाली, हाँ एक ऐसा कहावत है, इट वॉज इन माई नोट्स, ओके सो नो प्रॉब्लम। सो राजा जो होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाँ बंगाल में प्रोवर्ब ये है कि जितना राजा, जिस देश का राजा बेकार वो राजा दुखी है, इन बंगाल देयर इज अ प्रोवर्ब, इफ द किंग इज नॉट पायस द होल किंगडम इज स्पॉइल्ड, सिमिलरली इफ द हाउस वाइफ इज नॉट गुड द होल फैमिली इज स्पॉइल्ड, ग्रेनी अच्छी नहीं है तो घर खत्म हो जाता है, राजा अच्छे नहीं है तो राजा खत्म हो जाता है, इस तरह से राजा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे कोई युद्ध नहीं कर देता, जैसे कोई कुछ लोग होते हैं कि वो अपने काम में असफल हो जाते हैं तो प्रजा का ध्यान हटाने के लिए छोटा मोटा युद्ध कर देते हैं ताकि प्रजा उसकी गलती को ना देखे और फिर वो युद्ध के उसमें लग जाए और फिर वो उसका काम हो जाए और लोग उसको फिर गाने देना बंद कर देते, कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिसे स्टंट होता है, नकली युद्ध होते सब बेकार के, लेकिन वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जाता है, तो ऐसा करते हैं कुछ लोग, मैंने अमेरिका तो बहुत फेमस है इसके लिए, अमेरिका में कोई भी प्रॉब्लम थोड़ा राजा के अगेंस्ट में कुछ हो जाएगा इंटरनल सीधा ये तो युद्ध ठोक देंगे, तो युद्ध में लग जाएंगे सर तो जो बात थी उस पर पानी डाल देंगे खत्म, तो किंग्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे कैन नॉट बिहेव इन दिस इरिस्पॉन्सिबल वे दैट। ओके सो वी कैन स्टॉप हियर, टेक्स्ट नंबर 32 तक हमने किया, एनी क्वेश्चन? समझ नहीं पाया, हाँ गहना कर्म और गति, कर्म की जो गति है ना बहुत गहन है, इसको वो मैथमेटिक्स जैसा नहीं होता उसमें कि 2+5=7, तो इस तरह से अगर कोई आर्मी मैन अगर मर जाता है तो उसको क्या परिणाम मिलता है, तो उसके सारे कर्मों के आधार से उसको देखा जाता है, ऐसा है कि उसको स्वर्ग मिल जाता है क्योंकि वो धर्म युद्ध नहीं कर रहा था, अभी आप कहेंगे कि नहीं वो तो अपना ड्यूटी कर रहा था, दैट्स फाइन वो अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन राजा कैसा था वो भी देखा जाता है सब कुछ, और वहां तो भगवान थे नहीं गीता सुनाने वाले कि उनके सामने मरेगा सब वैकुंठ जाएगा ऐसे बोल रहे हैं, गहना करवाना मुझे। मोर क्वेश्चन? सो वी स्टॉप हियर।